श्रोताओं, पैगम्बर इस्लाम के स्वर्गवास और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
अट्ठाईस सफर को मुसलमान पैगम्बर इस्लाम के स्वर्गवास और उनके नाती इमाम हसन की शहादत की बरसी मनाते हैं। आज के दिन पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस नश्वर संसार से विदा ली थी। इस दुखद अवसर पर हम आपकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने स्वर्गवास से पहले इस्लाम को परिपूर्ण धर्म के रूप में मानवता के सामने पेश कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि मुझको नैतिकता को उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। जिस समय पैगम्बर इस्लाम इस नश्वर संसार में आए, उस समय अरब जगत में अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ था। ईश्वर के बारे में उस समय के अरब लोगों के विचार अंधविश्वासों पर आधारित थे। वे लोग ज्ञान से बहुत दूर थे। उस काल में महिलाओं को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था। पैगम्बर इस्लाम ने अपने जीवन में अथक प्रयास करते हुए अज्ञानता से संघर्ष किया और उस काल में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए अंतिम समय तक प्रयास किए। अपने पहले संदेश में पैगम्बर इस्लाम ने ज्ञान के महत्व को समझाते हुए ज्ञान अर्जित करने पर बल दिया। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की उपासना का निमंत्रण दिया।
वास्तव में ईश्वर द्वारा उसके दूतों को भेजने का मूल उद्देश्य ये था कि मनुष्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाए कि महान ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। पैगम्बर इस्लाम ने जिस एकेश्वरवाद की आधारशिला रखी, उसमें प्रेम और ईमान जैसे रत्न हैं। पैगम्बर द्वारा बताया गया ईमान ऐसा ईमान है जो मनुष्य के दिल में होता है और वो सही दिशा में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर के अंतिम दूत पैगम्बर इस्लाम दया व कृपा की प्रतिमूर्ति थे। महान ईश्वर ने उन्हें पूरे संसार के लिए दया व कृपा का आदर्श बताया है। जिन लोगों ने वर्षों पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से शत्रुता की थी, पैगम्बर इस्लाम ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस प्रकार पैगम्बर इस्लाम ने हर प्रकार की हिंसा, अन्याय, भेदभाव और पक्षपात का विरोध किया और सबके साथ समान व्यवहार किया। पैगम्बर इस्लाम की कृपा और उनकी दया केवल उनके परिवार वालों या मानने वालों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इससे अन्य धर्मों के मानने वाले भी लाभान्वित होते थे। इस्लाम धर्म को भलीभांति पहचानने का एक मार्ग पैगम्बर इस्लाम के जीवन का अध्ययन है। पवित्र कुरान में पैगम्बर इस्लाम को मानवता के लिए आदर्श के रूप में बताया गया है।
पवित्र कुरान में अंतिम ईश्वरीय दूत की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और विभिन्न अवसरों पर उनके बारे में बताया गया है। ईश्वरीय संदेश में पैगम्बर इस्लाम के आज्ञा पालन को ईश्वर के आज्ञा पालन और उनकी अवज्ञा को ईश्वर की अवज्ञा की संज्ञा दी गई है। पवित्र कुरान अनेक आयतों में पैगम्बर इस्लाम के व्यक्तित्व व शिष्टाचार की प्रशंसा करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस्लाम इतने कम समय में जो विश्व के कोने कोने में फैल गया, उसका मुख्य कारण पैगम्बर इस्लाम का व्यक्तित्व था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुसलमान पैगम्बर इस्लाम के जीवन का अनुसरण करके लोक परलोक में कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम के दृष्टिगत समाज वो है जिसके सभी सदस्य एक ईश्वरवाद के आधार पर एक दूसरे से भाईचारा करें। इस आदर्श समाज में भाईचारे की भावना प्रभावित होगी और इसके सारे सदस्य एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे जिससे एकता को बल मिले। पैगम्बर इस्लाम का कथन है कि प्रेम, मित्रता और दया में ईमान वाले एक शरीर के अंगों की भांति हैं। जब कोई अंग किसी समस्या के कारण पीड़ा में होता है, तो ये पीड़ा अन्य अंगों को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। एकता का पाठ सिखाने वाले पैगम्बर इस्लाम का एक कदम यह है जो उन्होंने मक्के पर विजय प्राप्त करने के बाद उठाया। आपने कहा था कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसे अपने भाई पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अपने भाई को अपमानित नहीं करना चाहिए और उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
पैगंबर इस्लाम ने एकता व एकजुटता को प्रबल बनाने के लिए नस्ल भेद और जातिवाद को पूर्ण रूप से नकार दिया। इस्लाम ने जातिवाद और नस्ल भेद से संघर्ष किया और कहा कि केवल तकवा या ईश्वरीय भय ही श्रेष्ठता का एकमात्र मापदंड है। उन्होंने नस्ल भेद को समाप्त और एकता को मजबूत करने के लिए बिलाल हबशी और सलमान फारसी को सम्मान दिया ताकि जातिवाद और नस्ल भेद का अंत हो तथा ईश्वरीय व धार्मिक मूल्यों के पालन को सामाजिक महत्व प्राप्त हो।
श्रोतो, आज ही के दिन पैगंबर इस्लाम के बड़े नवासी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी शहादत दिवस है। पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के 40 वर्षों के बाद सन 50 हिजरी कमरी को आज ही के दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत अली और हजरत फातिमा जहरा के बड़े बेटे थे। अपने जीवन के 8 वर्ष उन्होंने अपने नाना पैगंबर इस्लाम के साथ ही व्यतीत किए थे। पैगंबर इस्लाम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस समय पैगंबर इस्लाम पर वही नाजिल होती थी उस समय इमाम हसन भी वहां मौजूद होते थे। इन आयतों को वे अपनी माता हजरत फातिमा को सुनाया करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी चाल चलन सब कुछ पैगंबर इस्लाम से मिलता जुलता था। वे लोगों में बहुत अधिक दान दक्षिणा किया करते थे जिसके कारण उन्हें करीम अहले बैत भी कहा जाता था। करीम का अर्थ होता है अत्यधिक दान दक्षिणा करने वाला।
अपने पिता इमाम अली की शहादत के बाद इमाम हसन ने ईश्वर की ओर से लोगों के मार्गदर्शन का दायित्व संभाला था। जिस समय इमाम हसन ने ये ईश्वरीय दायित्व संभाला उस समय इस्लामी समाज बहुत ही संवेदनशील चरण से गुजर रहा था। अपने एक संबोधन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम को वास्तविकता को स्पष्ट करने वाले द्वीप की संज्ञा दी थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे पैगंबर इस्लाम के मार्ग पर चलेंगे।
इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ईश्वरीय पद पर आसीन होने से मुआविया बहुत क्रोधित हुआ। सीरिया पर शासन करने वाले मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने की योजना बनाई। वो विभिन्न बहानों से इमाम हसन को क्षति पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता था। इमाम हसन ने मुआविया को संबोधित करते हुए कहा था कि वो अपनी गलत हरकतें छोड़ दे। इस्लामी जगत का विशाल भाग इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शासन के अधीन था, किंतु इस दौरान मुआविया की ओर से निरंतर विध्वंसक कृत्य किए जा रहे थे जो सीरिया का तत्कालीन शासक था। मुआविया की ओर से अवज्ञा और विध्वंसक कृत्य के कारण युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी युद्ध के लिए सेना तैयार कर ली थी, किंतु इस्लामी समाज की उस समय की स्थिति के दृष्टिगत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने युद्ध करने में संकोच से काम लिया। इसी समय मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शांति संधि का प्रस्ताव दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भविष्य को देखते हुए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
शांति का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक भाषण में कहा था कि इस समय युद्ध मुसलमानों के हित में नहीं है। इसके बाद उन्होंने सूरह अंबिया की आयत संख्या 111 पढ़ी, जिसके अनुसार शांति समझौता लोगों की परीक्षा और उनके हित में है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि उद्देश्य की प्राप्ति सैन्य मार्ग से संभव नहीं है। इमाम हसन का उद्देश्य शुद्ध इस्लाम की रक्षा करना और उसे कुरीतियों से सुरक्षित करना था। ऐसे में इमाम के सामने माविया से संधि करने के सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं था। यही कारण था कि वे सत्ता से हट गए ताकि इस्लामी जगत को और गंभीर खतरों से बचाया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने इस कदम से ये दर्शा दिया कि वे सत्ता लोलुप नहीं हैं, क्योंकि ये सब उच्च उद्देश्य तक पहुंचने के साधन मात्र हैं।
पैगम्बर इस्लाम की शिक्षाओं को जीवित रखना और धर्म की रक्षा करना इमामों का मुख्य उद्देश्य रहा है। शासन का गठन करना, असत्य के खिलाफ उठ खड़े होना, शांति संधि करना और मौन, इन सब के पीछे इमाम का उद्देश्य इस्लाम की रक्षा तथा पैगम्बर इस्लाम के आचरण को जीवित करना था। जब स्थिति ऐसी हुई कि असत्य के खिलाफ उठ खड़े होना ज़रूरी हो गया तो वे उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने मौत से टक्कर ली। यदि स्थिति ऐसी होती कि शांति संधि से इस्लाम की रक्षा हो सकती थी तो वे संधि करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के काल में इस्लामी समाज की स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई थी कि मुआविया से जंग करने के परिणाम में इस्लाम के मिट जाने का खतरा मौजूद था।
इमाम हसन की गतिविधियों से मुआविया बहुत चिंतित था। उसने इनको रुकवाने के लिए बहुत प्रयास किए किंतु सफल नहीं हो सका। अंततः उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हत्या करने की योजना बनाई। इस प्रकार मुआविया ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत सन 50 हिजरी कमरी को इमाम को जहर दिलवाया, जिसके कारण आज के दिन वे शहीद हो गए।
श्रोताओं, पैगम्बर इस्लाम के स्वर्गवास और उनके नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक बार फिर आप सबकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं।